જેમાં એક ભારતવર્ષ કી જો કથાએ હૈ ઉસમેં કઈ બાર હમ દેખતે હૈ સિર કટ જાના ઓર એક નયા સિર આના, ડીકેપિટેશન ફોલોડ બાય અ ન્યૂ હેડ. ઓર યે બડી ઇન્ટરેસ્ટિંગ હૈ, ઇસકે પીછે એક બહોત જો જો આઈડિયા હૈ, જો સિમ્બલ હૈ, વો બડા સુંદર હૈ. એક ક્વિક રન અગર હમ લોગ કરે 5 મિનિટ વાલા, કોન કોન સી કથાએ હૈ. એક કથા આતી હૈ જો દશ મહાવિદ્યા મેં આતી હૈ, વહાં તો છિન્નમસ્તા રૂપ મેં જગન માતા અપના હી સિર અપને હી હાથો સે કાટ લેતી હૈ. દેખને સે આપકો વિભત્સ લગેગા, લેકિન ઉનકે નીચે એક જો કપિલ હૈ, એક મેન ઓર વુમેન હૈ, વો દોનો એક યોની મુદ્રા મેં હૈ, જહાં વો સંભોગ કી મુદ્રા મેં હૈ. અબ દેખીએ, બડા ઇન્ટરેસ્ટિંગ હૈ કે એક ઓર ઓલ્ડ મસ્ટ બી ડિસ્ટ્રોયડ, ઓર તબ આપ એક નવ સૃષ્ટિ કે લીએ માર્ગ ખોલતે હૈ. એક સિમ્પ સાંકેતિક રૂપ મેં હૈ. તો હમેશા શીશ કા કટના એક ઓલ્ડ કા ડિસ્ટ્રક્શન હૈ, ઓર નય શીશ કા આના કોઈ નઈ ચીજ કા પ્રગટ હોના. તો માં કાલી ડિસ્ટ્રોય કરતી હૈ શીશ, નિમુંડ માલની હૈ. ઓર હમ દેખતે હૈ કે ભગવાન ગણપતિ કા ભી શીશ, તો ઉનકે અંદર ભી ક્યા હો રહા થા, વહી હો રહા થા. જગન માતા કી શક્તિ સે જન્મે હૈ, તો ઉનકે અંદર ભી બહોત ઉર્જા, ઉસકે સાથ અહંકાર, એક નેરોનેસ ભી કે નહીં મેં તો, યાની ભક્તિ ઓર ઓબિડિયન્સ મેં ભી એક અહંકાર આ ગયા, તો ઉનકા ભી શીશ જાતા હૈ. ઓર શીશ કી જગહ જો નયા શીશ આતા હૈ ગણપતિ કા, જો હાથી કા, તો વો દેખીએ. હાથી તો હમેશા બુદ્ધિમતા ઓર શક્તિ કા બલ કા પ્રતીક હૈ. બહોત બુદ્ધિમાન હોતા હૈ, બહોત દૂર કી ચીજે પહેલે જાન લેતા હૈ. હાથી કો હમ લોગ બહોત કમ મૂલ્યાંકન કરતે હૈ. હમ લોગ કો લગતા હૈ પશુ હૈ, લેકિન સાધારણ પશુ નહીં હૈ. હાથી કે અંદર યે સારી વિધાએં હૈ. કોઈ ચીજ કો યે જબ સુનામી આયા થા, તો હાથીઓને સબસે પહેલે ઇસકો મહેસૂસ કિયા થા. કૈસે મહેસૂસ કિયા થા? કેવલ સ્પંદનો સે ધરતી કે અંદર જો હો રહે થે, ઉનકી ટ્રંક મેં ભી એક કેપેસિટી હોતી હૈ. ઓર શક્તિ બલ કા તો પ્રતીક હૈ યે. બુદ્ધિ બહોત હોતી હૈ, રાસ્તા યાદ રખેગા, માલિક કો યાદ રખેગા, ઉસકા કિયા હુઆ કોઈ ભી ચીજ હૈ ઉસકો સ્મરણ રખતા હૈ હાથી. તો હમેશા વો રોયલ્ટી કા ભી પ્રતીક રહા હૈ હાથી. તો વો ગણપતિ કા જો મસ્તક પુનર, એક પુરાના મસ્તક જાના ઓર નયા મસ્તક આના, ઇસકા પ્રતીક હૈ. ફિર એક ઓર કહાની આતી હૈ જહાં મસ્તક કટતા હૈ, વો હૈ દક્ષ પ્રજાપતિ કા. વહાં ભી હમ દેખતે હૈ ટ્રાન્સપોઝિશન હેડ કા હોતા હૈ, લેકિન વહાં પે ઉલ્ટા લગ જાતા હૈ. તો વો કહાની ભી બડી સુંદર પ્રતીક હૈ. દક્ષ પ્રજાપતિ એક રિજિડ મેન્ટલ ઓર્ડર કા પ્રતીક હૈ. ઉનકો દિયા ગયા થા ઇસ સંસાર કો ચલાને કા કાર્યભાર, લેકિન વો કરતે કરતે વો યે ભૂલ ગયે કે યે સંસાર મેં એક વિકાસ કા વિધાન હૈ. કોઈ ભી ઓર્ડર જબ પુરાના હો જાતા હૈ, ઉસકો ટૂટના અનિવાર્ય હૈ. ઓર વો યે સ્વીકાર નહીં કર રહે થે. સ્વયં ઉનકે ઘર મેં જન્મ લેતી હૈ માતા સતી, ડિવાઇન મધર, ઓર શિવ કો, શિવત ફ્રીડમ હૈ, વો સ્વીકાર નહીં કરતે. વો મેન્ટલ ફ્રેમ મેં હર ચીજો કો બંધ કરના ચાહતે હૈ. ઓર ફિર વો હમ લોગ બાકી સબ જાનતે હૈ કે ઉનકા શીશ શિવજી કે ગણ કાટ દેતે હૈ, ઓર ઉસકી જગહ એક બકરી કા સિર લગતા હૈ. યે બડી સુંદર કહાની હૈ, વો ભી ઉલ્ટા લગતા હૈ કે કેવલ ઇતના કાફી નહીં હૈ કે હમ પુરાને કો હટા દે, યે ભી આવશ્યક હૈ કે હમ કિસ ચીજ સે રિપ્લેસ કર રહે. તો ક્યોંકિ કઈ બાર હમ પુરાને કો હટા કરકે ઓર પીછે ચલે જાતે હૈ. તો આજ કે સંદર્ભ મેં તો એ બહોત આવશ્યક હૈ. શ્રી અરવિંદ ને પેરાબેલ ઓફ ધ ઓફ મહાદેવ એન્ડ સતી કે નામ સે પૂરા ઉનકા એક આલેખ હૈ, પોલિટિકલ સિસ્ટમ્સ કે ઉપર હૈ કે પુરાને પુરાના તો જાયેગા, ઉસકા જાના નિશ્ચિત હૈ, લેકિન ઉસકી જગહ નયા ક્યા આ રહા હૈ યે હમકો ધ્યાન રખના હૈ. પુરાના જાયેગા, ઓર ઇસકી બાત અભી ભી હમ લોગ કર રહે થે, પુરાના ઇઝ ડેસ્ટાઇન ટુ ગો. તો યે કહાની હૈ. પર જો સબસે ઇસકી અદ્ભુત કહાની હૈ, જિસકે બારે મેં એક કહાની હૈ, જહાં ગાર્ગી ઓર યજ્ઞવલ કા સંવાદ હૈ, જહાં પર યજ્ઞવલ કહેતે હૈ કે ગાર્ગી અગર તુમ ઓર પ્રશ્ન કરોગી તો તુમ્હારા શીશ ફટ જાયેગા, હજારો ટુકડો મેં ફટ જાયેગા. ક્યો? ક્યોંકિ કઈ ચીજે હૈ જો આપકી મન કી પરિધિ કે પરે હૈ, વો અનુભવ ગમ્ય હૈ. આપ એક પોઈન્ટ પર ઉસકો કેવલ ડિબેટ ડિસ્કશન સે નહીં જાન સકતે, You have to take the step, take the leap toward the future. तभी आप जान सकेंगे, नहीं तो आपका माथा भेंगे जाबे। और यहीं से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सिर फट जाएगा से। एक भारतवर्ष में एक परंपरा है, परंपरा मतलब एक तरीका है जिसको कहते हैं कपाल मुक्ति या कपाल भेदन, जहां सिर फटता है और चेतना मुक्त होती है, बाहर निकलती है। और ये कहानी बड़ी मिस्टिक सेंस में कही गई है भगवान के सातवें अवतार परशुराम की कहानी में, छठे अवतार, आठवें तो श्री कृष्ण। तो कहानी क्या है कि जो उनके पिता हैं ऋषि जमदग्नि, उनका विवाह उनकी जो पत्नी है रेणुका, जो राजा रेणु की पुत्री है, और अगस्त ऋषि ने दोनों का विवाह करवाया। एंड शी इज ए तपस्विनी, शी इज नॉट ऑर्डिनरी वुमेन, वो तपस्विनी है। और एज द स्टोरी गोज कि वो दोनों अब अल्टीमेट मास्टरी अपने निम्न चेतना, जिसमें सेक्सुअल थॉट्स ये सारी चीजें आती हैं, उसमें एंगेज्ड हैं। तो जो रेणुका देवी हैं, जो तपस्या में बहुत आगे बढ़ गई हैं, उनके मन में सेक्सुअल थॉट्स क्रॉस करते हैं, सेक्सुअल थॉट्स भी नहीं, वो एक इनेमर्ड होती हैं, एक क्रीड़ा, जल क्रीड़ा देखती हैं सेलेस्टियल बींग्स की। तो कुछ क्षण रुक जाती हैं क्योंकि उनके हृदय में ये भाव आते हैं। और ये सच है कि सेक्सुअल चीज़ें बहुत विनाशकारी होती हैं आगे बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जब आती हैं तो ऋषि जमदग्नि जान जाते हैं, तो वो अपने पुत्रों से कहते हैं कि कौन इसका शीश काटेगा, मेरी ये आज्ञा है। तो पांच पुत्र हैं, चार तो मना कर देते हैं, तो परशुराम कहते हैं मैं काटता हूं। तो परशुराम एक अवतार रूप में उनका शीश काट देते हैं। जमदग्नि बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं तुमने मेरी बात को ओबे किया है, तुम्हें क्या क्या चाहते हो तो मांग लो। तो वो कहते हैं कि आप वापस मेरी माँ को जीवित कर दो। तो फिर एक शीश लगा दिया जाता है उनके ऊपर। अब वो शीश किसका है, एक बहुत ही लो कास्ट या लो उसका शीश है, उसको लगाया जाता है। देखिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। अब ये तपस्विनी है, इनके अंदर सब कुछ है, लेकिन अंदर में एक जो स्पंदन था वो लो स्पंदन आता है। लेकिन इस शीश के लगने के बाद वो उन सब लोगों के कल्याण का मार्ग बन जाती हैं। तो बहुत कम लोगों को पता है कि रेणुका देवी की पूजा होती है साउथ इंडिया में, खासकर इनका मंदिर है कर्नाटक में, मंदिर है और एक दो जगह मंदिर है, उनको यलम्मा देवी के नाम से माना जाता है। और जितने भी जो लोग कहते हैं ना फॉलन आउटकास्ट, ये वहाँ पे जाते हैं। और विशेष रूप से कौन जाते हैं, देखिए भारत कितना एडवांस था, ट्रांसजेंडर्स, जो लोग ना मेल है ना फीमेल है, जो आउटकास्ट है। एक्चुअली वो ट्रांसजेंडर से ज्यादा सारे आउटकास्ट की देवी है। तो उन्होंने क्या किया, अब इस कहानी में देखिए, अपने ऊपर उन्होंने उस स्पंदन को धारण किया, जिसको स्पंदन करने से बड़े बड़े ऋषि मुनि भी घबराते हैं। उस स्पंदन को अपने अंदर धारण करके फिर ऋषि समझ गए, उन्होंने उनको कपाल मुक्ति, ही स्टिल लिबरेटेड हर, शी गॉट लिबरेटेड। लेकिन चूंकि उन्होंने उस स्पंदन का स्पर्श जाना, ये जाना कि इस स्पंदन से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, लोएस्ट वाइब्रेशन सेक्स को माना गया है, हालांकि एम्बिशन को एक एट पार रखा गया है उसके। माताजी कहती हैं, शेरविन से किसी ने पूछा था स्मेल के बारे में, तो शेरविन कहते हैं द डर्टीएस्ट स्मेल इज ऑफ सेक्स। मुझे लगता है परफ्यूम जहां ज्यादा यूज होते हैं शायद इसलिए नहाते नहीं लोग, स्नान नहीं करते हैं शायद, या जो भी। और माताजी एक जगह बताती हैं, मॉरिस मेगर आए थे यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो कहा इनकी जो साइट है कितनी ऑकल्ट, ही वाज ए फ्रेंच राइटर, कहते हैं ही हैड सच ए ऑकल्ट अंडरस्टैंडिंग। सो वो कहते हैं, मॉरिस मेगर माताजी से कहते हैं, मैंने ये देखा है कि जहाँ पर बहुत अधिक सेक्स प्रवृत्त होते हैं लोग, ये नहीं कि सेक्स का मास्टरी एक दिन में आती है, ये बात नहीं हो रही है, ना ये हो रही कि आपने आज से ये जान लिया कल से आप माँ मैंने सरेंडर कर दिया, इन नॉट देर इज ए प्रोसेस। पर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी केवल एक इम्पर्सनली एक ऊर्जा को देख रहे हैं। तो वहां मॉरिस मैगर ने कहा, मैंने ये देखा है जहां भी सेक्स की वृत्ति बहुत प्रबल होती है वहां पर छोटी छोटी एलिमेंटल एंटिटीज कौन है, भूत पिशाच आदि, ये वहां पे घूमती रहती हैं, विचरण करती रहती हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी देखा है कि कई बार जो अस्थिरता आती है व्यक्ति के अंदर, मेंटल इम्बैलेंसेस, वहां से प्रारंभ होते हैं, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं ये बड़ी भयानक है। एलिमेंटल एंटिटी से भूत भय ले आएगा आपके अंदर, पिशाच रक्त चूसना, बीमार करना, ये उसकी टेंडेंसी है। तो इसको कई बार हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कई बार अब बच्चे भी नहीं जानते, उनको लगता है अरे एवरीथिंग इज फाइन, बट इट इज डेंजरस। एक यहाँ पर मैं दो लोगों को जानता हूँ, एक जिसका माथा जब विक्षिप्त हुई, उसके पहले बड़ी प्रतिभावान, बहुत सुंदर, और सब उनका समाप्त हो गया। वो अभी भी जीवित हैं, दोनों ही जीवित हैं, और अब आप देखिए तो लगे इनके चेहरे को क्या हो गया है, आपको दुख होगा, दया आएगी। और वो माता जी बताती हैं, क्योंकि उसके अंदर ये वैनिटी आ गई थी, वैनिटी भी बड़ी भयानक है, मैं कुछ हूं। और दूसरी का माता जी ने उसको ये कहा था, पूरा सब चेंज हो गया उसके, अगर आप यंग एज की फोटो देखेंगे और अभी की, तो आपको ये लगेगा कि लिटरली कि क्या हो गया इस व्यक्ति को। माता जी कहती हैं, यू हैव टस्ट सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट गुड। तो ये जो रेणुका देवी, उनके लिए भी कुछ तो होना चाहिए ना प्रावधान, जो गिरे हुए हैं, जो इवन जो वैश्याले, वे सब रेणुका देवी, यलमा देवी को अपना डिवाइन मदर का वो रूप है। आप देखिए, अगर उस तरह से हम देखें तो आश्चर्य होता है कि इस कथा में कितने रहस्य छिपे हैं। लेकिन एवरेज कैजुअल देखो, मिसोगाइनिस्ट, अरे मिसोगाइनिस्ट है तो वो वापस क्यों उनके सिर पर ट्रांसप्लांट कर रहा है हेड को? तो कहानी बड़ी सुंदर है। तो हेड का जाना हमेशा इसका प्रति, इसीलिए सिर झुकाना, नमन करना, इसका प्रतीक होता है कि मैं तुम्हारे प्रति अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। भगवान के सामने प्रणाम करना केवल एक रिचुअल नहीं है, वो समर्पण का जो अंतिम प्रतीक है वो है पूरी तरह नतमस्तक। इसीलिए हम लोग कहते हैं नतमस्तक, मस्तक यानी आपने अपने सारे प्राइड, वैनिटी, सब कुछ, अहंकार की सीट, वो आपने उनके चरणों में रख दिया। माता जी कहती है इवन फिजिकली इस एक्ट का बड़ा महत्व है, जब आप पूरा झुकते हो, एक सरेंडर का प्रतीक है। तो ये प्रणाम से भी है, लेकिन ये भी इसके साथ में ये अंतिम बात कि हर किसी के सामने नतमस्तक नहीं हुआ जाता है, क्योंकि यदि आप किसी के नतमस्तक हो रहे हो तो आप अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर रहे हो, जाने अनजाने। ना हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि हालांकि ये एक प्रोसेस, लेकिन यू दैट मीन्स अब आपको वो देना है, यू हैव नो चॉइस। इसलिए नतमस्तक होना मतलब नाउ यू हैव टू डू सम, गिव समथिंग इनवर्डली, आपका कुछ जाएगा तो नतमस्तक केवल और केवल माँ के चरणों में करना चाहिए, सो दैट वी कैन रिसीव द प्योरेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर। तो ये सब मस्तक की कथाएं। जय माँ।